ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ अज्ञातिवरान्तश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द अद्वैतवदाय श्रीवासवि गौरभक्तं
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
सो पिछले दो वीक से दो लेक्चर्स हमने श्री रामचंद्र के गुणगान में लिए. लास्ट वेडनेसडे हमने महाराज दशरथ की कथा संक्षिप्त में बताई थी और कल हमने किस तरह से महाराज दशरथ के यहाँ राम और बाकी के तीन भाई उनके सब चारों भाई जन्म लिए उसकी कथा हमने बताई थी. ऋषि श्रृंग जो ऋषि था उसका इतिहास बताया था. और आज हम आगे चर्चा करेंगे उससे आगे, क्योंकि रामचंद्र की लीला अनंत है और उनकी कथा को हम सूक्ष्म जीव कुछ पार नहीं लगा सकते उसका. और रामचंद्र तो निरंतर उनकी पूजा होती है, रामचंद्र की शिव जी के द्वारा निरंतर. ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पंचमुखे महादेव राम राम हरे हरे. रामचंद्र भगवान का गुणगान गाते हैं पंचमुख से शिव जी राम राम हरे. लोग कहते हैं कि रामेश्वर का अर्थ होता है कि जो राम का ईश्वर है शिव. और वहाँ पर जो बैठा है रामेश्वर में वो कहता है कि मेरा ईश्वर राम है. तभी किसको सच मानना चाहिए? लोग को सच मानना चाहिए, जो स्वयं रामेश्वर मंदिर में जो बैठे हैं उनको सच मानना चाहिए. राम जिसके ईश्वर है ऐसे शिव. तो शिव जी और विष्णु के प्रति बड़ी गहरी भक्ति है. शिवजी के हृदय में विष्णु के प्रति बड़ी गहरी भक्ति है. सो रामचंद्र भगवान के विषय में हमने कल ये सुना था कि किस तरह से जन्म हुआ था चारों भाइयों का और क्या समस्या हुई थी वो खीर को लेकर के. खीर के पात्र ऋषिश्वर ने एक पुत्र कामिष्ठ यज्ञ किया था दशरथ के लिए और उस यज्ञ में से 10-12 किलोमीटर लंबा यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ था और उसके हाथ में उतना ही बड़ा खीर का पात्र था. कम से कम 50-100 टन खीर होगा शायद. और उसने कहा कि ये खिला दो अपनी तीनों पत्नियों को, पुत्र जन्म होगा. तो समस्या को लेकर थोड़ा दशरथ परेशान थे कि मेरे तीन रानियों को खिलाना है और ये तो पूरी मेरी पूरी प्रजा खा सकती है इतने खीर है. तो दशरथ ने वशिष्ठ का हेल्प लिया. वशिष्ठ ने कहा कि मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता इसमें, ये ऋषि सिंह को ही पूछो, ये यही सब चीज़ों का सुझाव दे सकता है. तो ऋषि सिंह ने भगवान की स्तुति की और भगवान और प्रार्थना की कि जो महान से भी महान है और जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तब महान के महान इस रूप विशाल धारण करके आप इस घड़े में, इस कुंभ में प्रवेश किया है, इसलिए ये कुंभ बड़ा हो गया है। अभी आप कृपा करके छोटे हो जाइए ताकि कुंभ भी छोटा हो जाए। और इस तरह से तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा खीर दशरथ ने दिया और उनके यहाँ से जन्म हुआ। कौन किसका बेटा था कौन बताएगा, सब जानते हैं। ऐसे तो कौशल्या का नंदन हुआ, राम कैकेयी का नंदन हुआ, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा के यहाँ पर जन्म लिए। वशिष्ठ उनके गुरु थे, वशिष्ठ से अधिक जानकारी उस समय किसी के पास नहीं थी। बड़े प्रतापी गुरु थे वशिष्ठ। इक्ष्वाकु वंश, जितना भी इक्ष्वाकु वंश था, वो पूरे वंश परंपरा से वशिष्ठ उनके गुरु के रूप में सेवा कर रहे थे दशरथ के वंश में। और वशिष्ठ ने इन बालकों का जो विद्या आरंभ होता है सबसे पहले, तो उसका जो संस्कार होता है गुरुकुल का संस्कार, वो उन्होंने आरंभ करना था पहले दिन। तो उसके विषय में मैंने आपको बताया था कल कि पहला जब क्षत्रिय के यहाँ पर विद्या का आरंभ होता है तो उनको छोटे से बच्चे को हाथ में धनुष बांध देते हैं सबसे पहले, और वो कार्य करता है उनका फादर, और फिर आगे फिर गुरु सिखा देते हैं। वशिष्ठ ने यहाँ पर कह दिया था उनके पिता से को, आप चले जाइए दशरथ को। तो दशरथ ने कहा कि परंपरा तो ऐसी है कि पिता उसका जो होता है बालकों का, वो उसके हाथ में धनुष मार देता है, तो परंपरा को कैसे तोड़ सकते हैं, ये परंपरा है। तो वशिष्ठ ने कहा लेकिन खीर से बच्चा जन्म लेता है, ऐसी कौन सी परंपरा है? ऐसी तो कोई परंपरा नहीं है कि बच्चा खीर से जन्म लेता है, इसलिए तुम्हारी कोई परंपरा इधर काम नहीं करेगी। अब तुम जाओ। और दशरथ चले गए गुरु के आदेश से, लेकिन बाद में वशिष्ठ ने चारों कुमारों की परिक्रमा की। दशरथ के सामने ये सब नहीं हो सकता था, वो सोच में पड़ जाता है क्या हो रहा है, क्या कर रहे वशिष्ठ को क्या। तो दशरथ और वशिष्ठ ने चारों की परिक्रमा की, उनकी स्तुति की। आप परमेश्वर हो, आप कृपा करके इधर प्रकट हुए हो। जब जब आप प्रकट होते हो तो आप किसी अपने एक सेवक का सेवा आप लेते हो कि वो अलग अलग, यू नो, कोई गुरु बनता है, कोई भाई बनता है, कोई मित्र बनता है। तो आप इस युग में, इस समय आप प्रकट हुए हो, आप कृपा करके मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो, ये आपकी असीम कृपा है मुझ पर, तो मैं आपका गुरु के रूप में सेवा करने को तैयार हूँ। आप ही मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं आपको क्या सिखाऊँ। आप सबको एक सब चीज़ों का ज्ञाता हो। रामचंद्र ने बोल तथास्तु, ठीक है, देंगे आपको। सो इस तरह से उनका विधि, ये बचपन गुरुकुल में ये सब पढ़ना शुरू किया उन्होंने। बहुत सारी विद्याएं उन्होंने सीखी। रामचंद्र के विषय में कोई ज़्यादा बाल्य लीला हमें सुनने में नहीं आती, क्योंकि रामचंद्र का बचपन ज़्यादा समय युद्ध विद्या सीखने में ही गया था। लेकिन एक दो पुराण में से ऐसी बात हमने सुनी है, वो हम आपको बताते हैं कि एक बार दशरथ किसी काम से व्यस्त थे, वशिष्ठ किसी काम से व्यस्त थे तो इधर उधर हुए थे। तो ये दो बालक जो थे राम और लक्ष्मण, ये दोनों छोटे थे, तो उन्होंने दूर एक देखा, बच्चे थे छोटे छोटे, तो दूर उन्होंने देखा कि एक महिला पानी भर के आ रही थी और उसके नाक में बड़ी नथुनी थी, बहुत बड़ी। तो लक्ष्मण ने उनको, छोटा भाई था लक्ष्मण, लक्ष्मण ने थोड़ा मजाक उड़ाया, देखा देखो उसकी नथुनी कितनी बड़ी है, छोटा बच्चा होता है ऐसा ही करता है ना, उसको कुतूहल होता है, उसको अच्छा लगा है, कहते देखो कितनी बड़ी नथुनी है, बस ज़्यादा बड़ी है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। तो एक बाण लिया, उठा करके फेंक दिया उसके ऊपर, नथुनी छोटी हो गई। क्या बोलते, नथुनी बोलते ना नाक में लगाते उसको, नोज रिंग। तो नथुनी छोटी हो गई, तो जैसे नथुनी छोटी हो गई उसका वो लड़के का सांस रुक गया, चिल्लाने लगी, हाय हाय बचाओ बचाओ मेरी रक्षा करो, मैं सांस नहीं ले पा रही, नाक में फंस गई, वो छोटी बन गई। रामचंद्र ने देखा ये गड़बड़ हो गई, क्या कर दिया तूने लक्ष्मण, है ना। रामचंद्र ने दूसरा बाण उठाया, वो तो घबरा गया लक्ष्मण, अभी अभी ये चिल्लाएगी वो वशिष्ठ देख लेंगे, डांट पड़ेगी आज। तो उन्होंने उठा, राम ने उठा लिया एक छोटा सा बाण और फेंक दिया नथुनी के ऊपर, नथुना फिट हो गई वापस, जितनी थी वैसी हो गई। तो वो ठीक, हाँ अच्छा हुआ। उसने कहा कि आप अजीब लोग, ये भी क्या खेल है, और आप में इतना सामर्थ्य है कि एक बाण से आप मेरी नथुनी छोटी कर देते, दूसरे बाण से नथुनी बड़ी कर देते, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा कभी देखा नहीं, पहली बार देखा है ना। तो लक्ष्मण ने कहा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हम चाहे तो तुम्हारे नथुनी को आकाश उड़ा सकते हैं। देखो दूसरा बाण उठाया लक्ष्मण ने, और लक्ष्मण ने फेंका बाण नथुनी के ऊपर, और उसके नाक में से नथुनी निकल के आकाश में उड़ने लगी। तो वापिस चिल्लाने लगे, वो मेरी नथुनी मेरी नथुनी, और चिल्लाने लगी। फिर लक्ष्मण परेशान हो गया, अब ये फिर क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया इसने। फिर राम को कहा कि इसको वापस ले आओ। तो रामचंद्र ने फिर दूसरा बाण छोड़ दिया, उसका नथुनी आके उसको नाक में फिट हो गई। तो ऐसे कुछ खेल भगवान करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि यू नो ये कोई विद्या विद्या, ये छोटे बच्चे को कोई विद्या विद्या नहीं आता था, वो तो ऐसे ही खेल खेल में कर देते थे। इसका अर्थ है कि ये परमेश्वर है, ये कुछ भी नहीं है, खेल खेल रहे थे बस, थोड़ा सा बच्चे है ना तो एंजॉयमेंट, थोड़ा सा खेल रहे थे बस। लेकिन इतना छोटा सा बालक ये काम नहीं कर सकता, ये केवल भगवान कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत ही कम लीलाएं हैं इन बालकों के विषय में, लेकिन पूरा रामायण में हम देखते हैं कि किस तरह से लक्ष्मण राम का परछाई के रूप में सेवा करता था हमेशा। सारे भाइयों में सबसे बड़े राम थे, और जितने भी भाई थे सब राम को बड़ा प्यार करते थे, राम को पिता तुल्य समझते थे। हालांकि यही संस्कार है, जो बड़ा भाई होता है वो पिता के समान होता है, और जो छोटा भाई या छोटा बहन होता है वो पुत्र या पुत्री के समान गिना जाता है। तो रामचंद्र भी बाकी तीनों भाई के प्रति पूरा वात्सल्य उनको देते थे। सो ये सब धीरे धीरे वो लोग बड़े हुए गुरुकुल में, इस प्रकार की युद्ध विद्या सीखते सीखते, और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि दशरथ के द्वार पे एक व्यक्ति आया था, और उसने ऐसा समाचार दिया दशरथ को कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र आके तुरंत ऐसा कहा कि दशरथ कहाँ है। तो और सब लोग जानते थे कि विश्वामित्र बड़े ही क्रोध, बड़े ही शाप देने वाले, जैसे वो दुर्वासा मुनि मानते हैं ना लोग, दुर्वासा के नाम पे तो कहावत भी बनने लगी आजकल लोग मंदिर में भी, सब कई बार लोग इसको इस टर्म को यूज़ करते हैं, इज़ लाइक दुर्वासा, इज़ लाइक दुर्वासा, है ना, दुर्वासा जैसा है ना, ऐसा बोलते लोग। हालांकि दुर्वासा भगवान के भक्त है, शिव जी के अवतार हैं, लेकिन कुछ कार्य, कुछ लीलाओं के लिए अलग अलग प्रकार की ऐसी लीला करते हैं। लेकिन विश्वामित्र जो है उनका ऐसा ही स्वभाव माना जाता है कि वो तपोबल में बड़े ही प्रसिद्ध थे। विश्वामित्र का कैसा था कि वो, उसका लाइफ कैसे जाता था कि पूरा समय तपस्या बहुत करते। विश्वामित्र तपस्या के लिए प्रसिद्ध, तपस्या ही करते थे, हर छोटी बात में तपस्या करते थे, हिमालय चले जाएंगे ऐसे तपस्या करते रहते। और ये ये विश्वामित्र एक बार ऐसा हुआ था कि एक पेड़ के नीचे तप कर रहे थे और उस पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा था और पक्षी ने टट्टी किया और वो विश्वामित्र के सिर पे जाके गिरा। वो क्रुद्ध हो गए, क्रोध में आ गए, उसको शाप दे दिया, वहीं भस्म हो गया वो उसी जगह पर, है ना। इस शाप में उन्होंने 50 साल का तप नष्ट हो गया, 50 साल का तप। अभी एक ऋषि का पेड़ के नीचे बैठना स्वाभाविक है, पक्षी का पेड़ के ऊपर बैठना स्वाभाविक है, लेकिन पक्षी का टट्टी विश्वामित्र के ऊपर गिरना अस्वाभाविक था। और विश्वामित्र का यही काम चलता रहता था, जब तुरंत शाप दे देते थे और अपना तप बल नष्ट हो जाता था, अब मैं क्या करूँ, तप खत्म हो गया, दूसरी जगह बैठो, चलो फिर से तप करो। तो ऐसा सब वो करते रहते थे विश्वामित्र। इसके विषय में बताएंगे आपको विश्वामित्र कौन थे। लेकिन ये विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहते थे, ही इज कॉल्ड ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र का नाम और एक नाम है कौशिक, जो श्रीमद् भागवत में आता है उनका वर्णन। वो क्षत्रिय थे पहले पूर्व जन्म, उसी जन्म में, लेकिन पहले क्षत्रिय थे विश्वामित्र कौशिक। वो उनका इतिहास ऐसा है, आप सब जानते हो उनका इतिहास, फिर भी बताते हैं आपको कि कौशिक जब बड़ा राजकुमार था तो पहले के समय में राजकुमार, राजा लोग, वो राजा थे, उसके 100 पुत्र थे कौशिक के, 100 पुत्र थे और बहुत बड़ी आर्मी थी उसकी, बहुत बड़ी सेना थी। पहले के समय में राजा लोग जाते थे मृगया करने, शिकार करने, तो वो लोग जब भी जहाँ कहीं भी जाते थे तो कहीं कई बार तो 10-10 दिन, 15 दिन, महीना तक इस तरह से जंगल में रहते थे। तो ऐसे जंगलों में जनरली तपोवन होते थे, वनों में। सो इन तपोवनों में ऋषि लोग रहते थे, ऋषि लोग जनरली इस ऐसे स्थानों में नहीं रहते, ये शहर जैसी जगह पे, वो ऐसी जगह पर रहते जहाँ पर उनकी साधना करना आसान हो। और ऐसा होता था कि जब भी कभी ये कोई राजा जाते तो राजा, ये ऋषि लोग क्या होता था कि वो लोग तो फल फूल आदि खा लेंगे, पेड़ में से कंदमूल खा लेंगे, फ्रूट्स खा लेंगे, यही उनका भोजन रहता था, फ्रूट्स एंड रूट्स। लेकिन राजा तो ऐसा भोजन थोड़ी कर सकता है, राजा को तो रोज स्विष्ट होता है, उसको तो बहुत सारा खाना होता है रोज, वैरायटी ऐश्वर्य होता है राजा का। तो जनरली इस तरह से राजा लोग जाते थे तो उनके साथ इतना सामान नहीं होता था कि कुक पूरा कुक करके रोज राजा को खिलाए। उसमें ऐसा होता था कि वो लोग संत के यहाँ पर कोई ऋषि का आश्रम होता था, उसी ऋषि के आश्रम में एज ए फॉर्मेलिटी भी उनके आशीर्वाद लेने जाते, उनसे उनको प्रणाम करते, उनको सम्मान करते और उसके सामने ये ऋषि लोग उनको आशीर्वाद देते राजाओं को, कभी कोई वरदान भी दे देते। और उनकी योग शक्ति से ये ऋषि लोग वहाँ पर फिश बनाते थे। कई बार तो आश्रम में इतने सारे गुरुकुल के शिष्य होते तो उनके लिए फिश बना देते थे राजा के लिए। और तो ये फिश खाने का ये सबसे अच्छा तरीका था, ये राजा इसी तरह से अपना निर्वाह करता था। और ऋषि लोग को दान दक्षिणा राजा देते थे बाद में जितना संत, तो इस तरह से आश्रम भी चलते थे और राजा भी प्रसन्न रहते थे। तो इस समय ये माहिष्मती का राजा था उस समय, ये कौशिक। तो वहाँ पर घूमते घूमते अपने 100 पुत्रों के साथ कहीं से गुजर रहा था और दूर से एक खाई पर्वत के ऊपर से देखा, वहाँ पर नदी बह रही थी और कुछ 4-5 झोपड़ी थी, छोटी सी कुटिया। उसको लगा यहाँ पर कोई आश्रम होना चाहिए, तो लेकिन ये चार कुटिया में हम 100 पुत्र और मेरी सारी सेना कहाँ आएगी, पॉसिबल ही नहीं है, छोड़ो इस आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने कहा, राजा ने अपने पुत्र को, तुम ऐसा करो, राजा का कर्तव्य है कि किसी भी आसपास का कोई भी ऋषि हो तो उसको सम्मान देना पड़ता है एज ए नियम, यू नो, एज ए रूल, एज ए फॉर्मेलिटी। तो मैं बिना सम्मान किए कैसे जाऊंगा? तो उसने अपने पुत्र को कहा कि तुम लोग मेरे साथ मत आओ, क्योंकि 4 कुटिया में भला 100 लोग कैसे आएंगे, इम्पॉसिबल, स्टे हियर, आप सब यहीं रहो, मैं आता हूँ जाके ऋषि को प्रणाम करके वापस आता हूँ, फिर अपने कोई दूसरे आश्रम में जाएंगे, वहाँ पर फिर अपना भोजन वगैरह सब करेंगे। तो वहाँ पर गए तो वहाँ पर देखा कि 2 ब्रह्मचारी कपड़े धो रहे थे नदी में। तो 2 ब्रह्मचारी के पास गए और कहा कि आपका ये आश्रम यहाँ पर है, आपके गुरु कौन है, कौन सा आश्रम है? तो उसने कहा कि ब्रह्मचारियों ने कहा कपड़े धो, बोले ये वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। बोले वशिष्ठ मुनि, इतने तेजस्वी मुनि और मेरे राज्य में आए हो, मुझे पता भी नहीं है। तो बोले इनका ऐसा ही है, ये कभी भी कहीं पर भी विचरण करते, एक स्थान पे आते 300 साल रहते, वहां पर विद्या सिखाते, जैसे क्राउड इकट्ठा होता है 2 ब्रह्मचारी को उठा के चले जाते, फिर दूसरी जगह पहुंच जाते, वहाँ पर रहते इस तरह से 200-300 साल तक। तो उनको क्राउड पसंद नहीं है, तो इसलिए आज वो यहाँ पर है, कुछ समय तक यहाँ पर है। तो बोले मैं उनको मिलना चाहता हूँ, आइए चलिए। तो वशिष्ठ के पास ले गए, वशिष्ठ एकदम सिंपल, कोई एक छोटा सा कॉपिन और चद्दर डाल के बैठे थे मुनि, और कहा आओ आओ महाराज कौशिक पधारिए। तो बोले कि उसने अपना मुकुट, बहुत सारे आभूषण मुकुट वगैरह सब उतार दिया ये राजा ने, एटिकेट कि वो ऋषि के पास गया है। तो उसने प्रणाम किया और प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, कहा कि महाराज मैं, मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर हो, इतने बड़े तेजस्वी ऋषि वशिष्ठ यहाँ पर विराजमान है मेरे राज्य में, मुझे आप बोले। वशिष्ठ ने पूछा कि क्या तुम यहाँ से गुजर रहे हो? तो बोले हाँ मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मेरा ऐसा इच्छा था कि मैं आपका आशीर्वाद लेते चलूँ। बोले तुम ऐसे तो कैसे जा सकते हो, तुम अगर अपना नियम का पालन करो तो मैं भी अपने नियम का पालन करता हूँ। मेरा ये सेव मेरा भी कर्तव्य है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ जितने भी लोग हैं उन सबको उत्तम भोज खिलाऊं। तो वो हंसने लगे विश्वामित्र कौशिक, बोले कि क्षमा कीजिए महाराज, मैं अकेला नहीं हूँ और मेरे साथ एक दो लोग नहीं हैं, मेरे पास 100 तो मेरे बेटे हैं और उसके पीछे बहुत सारी सेना है, 1000 लोग सेना के हैं। अभी इन सारे लोग को मैं यहाँ पर कैसे ला सकता हूँ, आपकी यहाँ पर 4 कुटिया है बस, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद लेकर चला जाता हूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, तुम आ जाओ इधर भोज ले लो, डोंट वरी। तो बोले मैं अपने पुत्र को छोड़ के कैसे खा सकता हूँ। नहीं बोले तुम्हारे पुत्र को बुला लो, तुम्हारे सेना को बुला लो, और भी सेना अगर राज्य महल में या राज्य में कहीं पर है तो उसको भी बुला लो। तो सोच में पड़ गए ये क्या कह रहे हैं। बोले इतना चिंता मत करो, इतना सोचो मत, जाओ। तो उसने सोचा कि ये कुछ भी बोल रहा है क्या, ऐसे ही ये नींद में तो नहीं है ये ऋषि। लेकिन बाद में सोचा ये ऋषि है, ऋषि के सामने ज़्यादा ओवरवाइज नहीं बनना चाहिए, यू नो ऋषि है तो अगर क्रुद्ध हो गया तो शाप दे देगा, और मुझे शाप नहीं चाहिए। राजा था ना ये, तो बोले मैं जाऊँगा पहले अपने पुत्र के पास, फिर ठीक है मैं आता हूँ। तो अपने पुत्र के पास गया, पुत्र को चलो भाई सबको बुलाया है भोजन के लिए ऋषि ने। तो पिताजी क्यों आप मजाक कर रहे हो, ये 4 कुटिया है, हम सब इकट्ठा आएंगे तो कुटिया भी ध्वस्त हो जाएगी और हम भी ध्वस्त हो जाएंगे, कैसे क्या पॉसिबल ही नहीं है, कैसे संभव है। तो बोले हाँ भाई तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं इस ऋषि के श्राप से डरता हूँ। तुम जानते नहीं है वशिष्ठ कितना पावरफुल है, अगर एक बार श्राप दे दिया तो मेरा कोई कुछ कहीं का नहीं रहूँगा, इसलिए बुलाया है तो उसकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है चलो, सबके सब आए, 100 सेना और उसके पीछे 1000 सेना, हजारों सेना सब आई वहाँ पर, सब आए रहे थे नीचे वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास। तो वशिष्ठ वहाँ से आए बाहर, तुम सब लोग आ गए, जाओ सब लोग स्नान कर लो, खाना रेडी है, भोजन प्रसाद रेडी है, जल्दी जल्दी स्नान कर लो ठंडा हो जाएगा। तो ये समझ नहीं पा रहे थे ये क्या हो रहा है सब। ठीक है ऋषि ने कहा स्नान करो, स्नान कर लिया सबने स्नान किया, स्नान करके वापिस आए। तो जब वापस आए तो देखा कि वहाँ पर बहुत बड़ा महल बन गया था उस जगह पर, और महल ही क्या, सरोवर और बहुत सारा बहुत कुछ सब, यू नो वेल फर्निश्ड, और पेड़ पौधे बगीचे सब कुछ बन गया। तो चौंक गया ये देखकर, ये क्या है। और एक बहुत खुला सा बहुत सुंदर एक जगह था, ग्रीन वो घास का मैदान था सुंदर। बोले वशिष्ठ ने कहा कि सब लोग बैठ जाइए लाइन में, यू नो सब लोग बैठ गए, कोई प्लेट नहीं थी वहाँ पर। तो सब सोच तो फिर कहा कि विश्वामित्र ने कहा वशिष्ठ को कि महाराज जी आप यहाँ पर हम सबको बिठा रहे हो भोजन के लिए, ना मुझे भोजन कहीं से दिख रहा है, ना कोई पात्र है, ना कोई अरेंजमेंट, ना कोई खुशबू आ रही है, और ना कोई पत्तल आपके पास है, ना कोई कुछ है ही नहीं, तो आप खाएंगे कहाँ पर हम। तो वशिष्ठ ने उनको कहा प्लेट में तो कुछ नहीं है, आप ऐसा करो आप सोचो आपको कौन सी प्लेट चाहिए, आपको जो प्लेट चाहिए मांग लो, इच्छा कर लो। तो मुझे डायमंड प्लेट चाहिए, तुरंत डायमंड प्लेट आ गई, ये देख के बनी हुई प्लेट, ओ बाप रे सब पूरा भर गया, सबके पास डायमंड प्लेट फुल। लेकिन प्रसाद खाने के लिए इसको जो खाना है सोचो, जो चाहिए मांगो, जो इच्छा हो बस सोच लो, जितना क्वांटिटी चाहिए उतना। वो सब लोग सोचने लगे और एक एक करके आइटम अपने आप प्रकट होने लगी उनकी प्लेट में, वो ये सब क्या हो रहा है। और खाते रहे एक उसने एक बीच में बोला कुछ भी मांग सकता हूँ, बोले हाँ कुछ भी मांग सकते हो, बोले किसी भी जगह का किसी भी कोई भी आइटम, बोले हाँ। एक ने कहा वो इंद्र बर्थडे के दिन क्या खाता है स्वर्ग में? बर्थडे के दिन इंद्र जो खाता होगा वो डिश मुझे दो आज, तो वो आ गई। सब लोग सोच रहे थे अजीब है, वो विश्वामित्र तो चौंक गए, ये क्या हो रहा है। सब लोग खुश हो गए, कितना अनलिमिटेड क्वांटिटी, जितना खाना है खाओ, जितना जो चाहिए खाते रहो। इतना सब खाते रहे, उसके बाद कहाँ कि सबने खाना हो गया सबका, प्लेट अपना चली गई। सब खुश हो गए, कहा कि अब इतना भारी खाया है, कुछ संगीत वंगीत हो, कुछ नृत्य वगैरह कुछ हो, यू नो, तो कुछ देखे, कुछ आनंद, यू नो, कुछ हो। तो कहा कि हाँ मांगो। विश्वामित्र पूछा, बोलो कौन सा संगीत देख आपको देखना है, कौन सा यू नो नृत्य देखना है आपको। तो बोले विष्णु के लिए श्वेत द्वीप में उनको प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य होता है वो नृत्य देखना है। विष्णु को प्रसन्न करने के श्वेत द्वीप में, जहाँ पर कोई देवता भी नहीं जा सकता आसानी से, ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ता है, ब्रह्मा जी लेके जाते, वहाँ पर जो नृत्य होता है वो देखना है। और नृत्य शुरू हो गया, वैकुंठ के लोग आ गए, वहाँ पर नृत्य शुरू कर दिया। तो ये विश्वामित्र परेशान होने लगा। अभी उसके मन में भौतिक जगत का सबसे बड़ा शत्रु वो उसके हृदय में बैठ गया, ईर्ष्या। ऐसा होता है ना, जब आप किसी का ऐश्वर्य देखते हो तो आप परेशान हो जाते हो, अब ये व्यक्ति इतना सुखी कैसे हो सकता है ना। ये भौतिक संसार की समस्या है। भौतिक संसार में हम यहाँ पर देखते कलयुग के, खास करके कलयुग में ही ज़्यादा होता है, सबका जो विचार होता है वो होता है पर सुखे दुखी और पर दुखे सुखी, है ना। किसी का सुख देखते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते, तो बात बदल देंगे आपकी, सुन नहीं पाएंगे वो, क्योंकि उनको अनइजी फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। कैसे आप इतना प्रसिद्धि, इतना नेम फेम, किसी का सुख प्रतिष्ठा, ये कैसे संभव है। यू नो आई एम द बेस्ट एंड आई विल बी द बेस्ट, यू नो, ऐसा बहुत कई बार भक्तों के बीच में भी ऐसा हो गया, आई एम द बेस्ट, मैं सबसे उत्तम हूँ, आई एम द बेस्ट, इफ आई एम नॉट द बेस्ट बट दिस मैन कैन नॉट बी बेटर देन मी। अगर मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ लेकिन ये तो मुझसे अच्छा तो नहीं है, ये बड़ी कुटिल भावना, बड़ी दुष्ट तुच्छ भावना है, ये भौतिक जगत का रोग है ये ईर्ष्या। और इस ईर्ष्या के कारण लोग अपना ही नुकसान करते हैं, अपना ही नुकसान करते हैं ईर्ष्या के कारण लोग। आज वो नुकसान दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन कल ये नुकसान अवश्य दिखेगा, जो लोग ईर्ष्या के वश होकर जो भी कार्य करते हैं। और ईर्ष्या को ईर्ष्या समझना भी आवश्यक है, नहीं तो कई बार हम ईर्ष्या करते लेकिन हम जानते हैं, हम जानते ही नहीं कि ईर्ष्या है। तो विश्वामित्र को ईर्ष्या होने लगी वशिष्ठ की, तो कहा कि महाराज आप एक चीज़ हमें बताइए कि आपके इस इतने सारे ऐश्वर्य का रहस्य क्या है, क्या है तुम्हारा रहस्य, कैसे ये सब संभव है। उसके मन में ऐसा होने लगा है, मैं इस जगह का राजा हूँ, सारे लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, इस ऋषि की, छोटा सा ऋषि, चार कुटिया का मकान था उसमें बैठा हुआ, बिना एक छोटा सा लंगोट पहन के बैठा था, उसकी लोग पूजा कर रहे हैं, और मैं यहाँ राजा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे उसको शर्म आने लगी, तो बोला क्या रहस्य है आपका। बोले रहस्य तो कुछ नहीं है, बस एक काम धेनु गाय है, एक गाय दर्शन कराया। बोले ये है मेरी गाय, ये काम धेनु गाय जो है, इसके कारण ये सब यू नो ऐश्वर्य प्राप्त होता है। बोले ये गाय का इतिहास ये है कि समुद्र मंथन में जब देवदानों के बीच में मंथन हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ प्रकट हुई थी एक एक करके, तो उसमें एक कामधेनु गाय भी प्रकट हुई थी। और ये काम धेनु ग्राह प्रकट होने के बाद भगवान विष्णु ने स्वयं इस गाय को वशिष्ठ को दे दिया था, क्योंकि ये किसी राजा को इसलिए नहीं दिया था क्योंकि राजा लंबा नहीं जीता जितना वशिष्ठ जीता है। राजा आज राजा है, कल राजा ना भी हो, लेकिन इसकी देखभाल कौन करेगा? और विद्वान और ज्ञानी वशिष्ठ की तुलना में कोई था नहीं, और इसलिए भगवान विष्णु ने सोच समझ कर इस गाय को वशिष्ठ को ले लिया, बोले तुम इसकी देखभाल करो। और ये कामधेनु गाय का ये लक्षण था कि जो इच्छा करते हो वो पूरी हो जाती है। तो विश्वामित्र ने कहा कि देखिए इस स्थान का राजा मैं हूँ, सारी उत्तम वस्तु राजा के पास होनी चाहिए, तुम एक संत हो, एक ऋषि हो, इस प्रकार के ऐश्वर्य की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ऐश्वर्य की आवश्यकता राजा लोग को होती है, तो ये गाय तुम मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ साधारण गाय दे दूंगा, सामने ये गाय तुम मुझे दे दो। वशिष्ठ हंसने लगे। वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र, उस समय कौशिक था महाराज कौशिक, तुम 1 करोड़ कामधेनु गाय दोगे इसके सामने तो मैं शायद विचार करूंगा कि इस गाय को मैं तुम्हें दूं या नहीं दूं। ये गाय स्वयं विष्णु ने मुझे दी है, इसलिए इस गाय को मैं नहीं दे सकता तुम्हें, सॉरी। तो वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र ने कहा, इस भूमि पे जो कुछ भी है, मैं भूदेव हूँ, बिल्कुल नरपति हूँ, इस जगह का राजा मैं हूँ, इस स्थान पे जो कुछ भी है वो सारी संपत्ति का राजा होने के नाते मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, इसलिए गाय अपने आप मेरी हो गई। तो वशिष्ठ ने कहा कि वेट अ मिनट, सी वंस, देखो, देखा तो कामधेनु गाय जो थी वो पृथ्वी से 4 फुट ऊपर थी, बोले इसका पांव जमीन पे नहीं है इसलिए तुम्हारी नहीं है। ये धरती पे नहीं है इसलिए तुम्हारी नहीं है, सॉरी। तो फिर वशिष्ठ ने विश्वामित्र ने कहा कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, जिस चीज की इच्छा मैं करता हूँ वो चीज मैं मांग के ले सकता हूँ तुम्हें सम्मान करके, अगर तुम सम्मान से मुझे नहीं देते हो तो मैं तुम्हें दंड दे के भी ले सकता हूँ, मैं इसे छीन के ले जाता हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी, मैं अभी इसे ले जाता हूँ। तो वशिष्ठ कुछ नहीं बोले और फिर वो गाय के पीछे गया, गाय की पूंछ पकड़ ली, वो गाय भी अजीब थी, उस गाय के लंबी गाय की जो पूंछ थी वो पूंछ भी जैसे पूरा काली पूंछ, सफ़ेद गाय ऐसे विशेष पूंछ थी और उसके पीछे मयूर पंख लगा हुआ था गाय को, और अजीब गाय थी वो। गाय का स्वरूप भी ऐसा है कि उसका थोड़ा बहुत शरीर मनुष्य जैसा था और जैसे उसके आंचल मनुष्य स्त्री के जैसे थे और उसका पूरा शरीर देवताओं की उपस्थिति से भरा पड़ा दिख रहा था, दर्शन हो रहा था कि सारे देवता उसमें उपस्थित है, ऐसा अजीब गाय था ये, विशेष गाय। तो इस गाय के पीछे से पूंछ पकड़ करके इस कामधेनु गाय को भगाने लग, ये चलाने ले गया, उठा के ले रहे घसीट के मिसे से चुरा के ले जा रहा था। तो कामधेनु गाय ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। वशिष्ठ को कहा तुम क्या कर रहे हो इधर, विष्णु ने तुम्हें दिया था मुझे, मेरी सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है, मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से आगे कहीं, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। तो वशिष्ठ ने कहा कि देखो वो गाय जो है वो यहाँ पर नहीं रहना चाहती, तो यहाँ से जाना नहीं चाहती, इसलिए उसको फोर्स मत करो। अगर वो गाय की इच्छा है कि वो तुम्हारे साथ आना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गाय की इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ आए इसलिए इसको फोर्स मत करो। बड़े प्यार से समझा दिया उसको, मत करो ऐसे। विषम वाला नहीं, मैं किसी के नहीं सुनूंगा, मैं इस गाय को ले जाऊंगा। तो उस गाय ने कहा, अरे दुष्ट म्लेच कहीं का ब्राह्मण ब्राह्मण की संपत्ति को चुरा रहा है, बोले तुम मुझे म्लेच्छ कहती हो, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मैं बड़ा क्षत्रिय राजा हूँ, बोले तू ब्राह्मण की संपत्ति चुरा रहा है, मैं जा तुझे मैं साथ देती हूँ, तेरा पूरा खानदान नष्ट हो जाए और तू चांडाल बन जाए, इस जन्म में नहीं बनेगा तो अगले जन्म में चांडाल बन, लेकिन चांडाल बन जाए। इस तरह से श्राप दिया। तो बोले तू गाय है, ज़्यादा बकवास मत कर, चुप कर, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ। जब देखा इन्होंने वशिष्ठ ने, तो वशिष्ठ ने कहा कि तुम इसको नहीं ले जा सकते। बोले मैं तुम्हें चाहूँ तो तुम्हें भस्म कर सकता हूँ अभी इसी समय, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तुम्हारे सौ पुत्र कहाँ हैं? उसमें सौ पुत्र उसके पीछे ही थे। विश्वामित्र ने एक ही पल में एक मंत्र बोला, सारे पुत्र गायब, सारी सेना गायब एक ही मंत्र में। तो चौंक गया विश्वामित्र, ये क्या हो गया? बोले आप चाहो तो तुम्हें भी भस्म होना है तो तुम भी भस्म हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए भस्म नहीं किया क्योंकि तुम ये सौ मर गए तो बाकी के सौ फिर से तुम जन्म दे सकते हो, राजा बचोगे तो, इसलिए बेटर यही है कि इसको छोड़ के चले जाओ और ये लोभ छोड़ दो। बड़ा अपमानित हो गया ये, चला गया डर के मारे, क्योंकि अभी उसको भय होने लगा कि ये मार देगा मुझे। तो सोचने लगा कि एक ब्राह्मण एक ऋषि उसके पास इतना ऐश्वर्य है तो यूजलेस, क्षत्रिय बनने की क्या जरूरत है? राजा होने के बाद भी मेरे पास इतना ऐश्वर्य नहीं आ सकता तो फिर राजा बनने का क्या जरूरत है? तपस्या करूंगा मैं जाके। अभी देखो ये ईर्ष्या की ज्वाला कितनी भयानक होती है। उसके मन में वशिष्ठ के प्रति ऐसी भयानक ईर्ष्या थी, ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो गई ना, ऐसा नहीं हो गया सोचो चलो चलो भाई छोड़ो यार, ये ऋषि बहुत तेजस्वी है, गाय उसको भगवान विष्णु ने दी है तो रखो उसके पास, बेटर ऐसा ही है कि वशिष्ठ के साथ हाथ मिला ले, मित्रता कर ले, कभी आगे जाके कभी आवश्यकता होगी अगर मित्र होगा वशिष्ठ काम में आएगा। राजा ऐसे करते सब लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं इस वजह से, हालांकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो एक साधारण सा विचार है कि जो ऊंचा व्यक्ति होता है उससे सब लोग मित्रता चाहते हैं। लेकिन भाई साहब का ईर्ष्या बड़ा ही तेज था, इसलिए वो संभव नहीं था कि वो और चला गया हिमालय। विश्वामित्र के विषय में तो जानते हो ना, ऐसे उसने तपस्या की थी लेकिन मेनका ने उसकी तपस्या भंग कर दी थी। 7,000 साल तपस्या करने के बाद मेनका ने उसकी तपस्या भंग कर दी। वो इंद्र को डर नहीं लगा, ये क्या कुछ करेगा, यू नो परेशान कर देगा, मेरा इंद्र आसान कर देगा, मेनका को भेज दिया, ये दो छुआ भी नहीं उसको, कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा सा यू नो ठंग 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 आवाज आई, उसका ध्यान भंग हो गया, उसका मेनका अप्सरा के साथ यू नो उसने विवाह कर लिया, सब कुछ छोड़ के आया जाए। 7,000 साल तपस्या के बाद भी उसका पतन हो गया। आप सोचिए क्या फ़ायदा है सारी तपस्याओं का, और ऐसे भी वो तपस्या खत्म तपस्याओं का मिसयूज़ तो करता ही रहता था कि आज इसको श्राप दे दिया, कल उसको श्राप दे दीजिए। तो विश्वामित्र ने शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी की तपस्या की, 300 साल तप किया विश्वामित्र ने, और 300 साल तप करने के बाद शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि क्यों तपस्या करते हो? शिव जी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि शिव जी की तपस्या करने वाले जो उनके साधक होते हैं वो जो भी वरदान मांगते हैं उस वरदान का एक ही आउटकम होता है, एक ही उसका परिणाम आता है कि विनाश, क्योंकि वो विनाश के अधिष्ठाता है, शिव जी, तो भले आपको मानने में नहीं आएगा, लेकिन शिव जी के जितने भी उपासक होते हैं वो जनरली एक ही प्रश्न पूछते हैं कि मैं किस प्रकार से मेरा विनाश हो। शिव जी ने पूछा मांगो क्या वरदान चाहिए, दूसरे शब्दों में शिव जी ने पूछा कि मांगो तुम्हें किस तरह से मरना है, तुम्हारा विनाश कैसे हो इसका चुनाव तुम खुद करो। केवल शिव जी के पास कोई विष्णु की भक्ति मांगता है या विष्णु का प्रेम मांगता है, भगवान का प्रेम मांगता है, तभी उसको सही फल प्राप्त होता है। इसके अलावा और जो कोई भी वरदान शिव जी के पास जाकर कोई मांगता है उसका नाश हो जाता है, उसका नाश ही होता है। इसलिए शिव जी के पास जाके कभी हमें भौतिक वरदान नहीं मांगने चाहिए। तो शिव जी ने कहा बोलो क्या चाहिए, तो कहा कि मैं राजर्षि बनना चाहता हूँ और जितने भी इंद्र चंद्र वरुण जितने भी अस्त्र दिव्य अस्त्र होते सारे अस्त्र मेरी तुनीर में होने चाहिए, सारे दिव्यास्त्र। सो ये सारे दिव्यास्त्र का खजाना शिव जी के पास होता है। अर्जुन ने भी जब दिव्यास्त्र इकट्ठा करना था तो भगवान ने उसको कहा था कि तुम पहले शिव जी को प्रसन्न करो, शिव जी की कृपा होगी तो सारे दिव्यास्त्र प्राप्त हो गए, उनके आदेश को सब फॉलो करेंगे। तो सारे दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र वरुणास्त्र अग्नियास्त्र सारे दिव्यास्त्र उसने इकट्ठा कर लिया और उसको राजर्षि का नाम दिया। मैं राजर्षि बनना चाहता हूँ, मैं राजर्षि बन गया विश्वामित्र, राजर्षि विश्वामित्र। सीधा उधर से हिमालय से सीधा आ गया वशिष्ठ के पास, सीधा डायरेक्ट। एक ही उद्देश्य था उसका, वशिष्ठ को हटाना, एक ही उद्देश्य था। सीधा वशिष्ठ के पास आ गया और वशिष्ठ जो उस समय अपने कुछ सेवकों से मसाज करवा रहे थे, ऑयल का मसाज। और ये ऑयल का मसाज जब वो करवा रहे थे तो उसकी जो गर्मी थी, तो उस समय ये बिना सावधान किए विश्वामित्र को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र ने उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र वशिष्ठ के पास आया, थोड़ा गर्मी गर्मी अनुभव होने लगा, आज इतनी ज़्यादा गर्म क्यों लग रहा है तेल, ऐसा क्यों है तेल, वो सोचता है। फिर पीछे मुड़ के थोड़ा देखा तो उनके शरीर के पास ब्रह्मास्त्र आके खड़ा था उनको वध करने के लिए। तो वो खड़ा था दूर, कुछ किया नहीं उसने, वो गर्मी दे रहा था। तो वशिष्ठ ने कहा अरे ब्रह्मास्त्र ये कहाँ से आ गया, और उसके पीछे दूसरा अस्त्र आया अग्नि अस्त्र, अरे ये कौन कर रहा है ये सब। देखा तो विश्वामित्र लगा एक के बाद एक छोड़ ही जा रहा है दिव्यास्त्र, बस ख़त्म ही करूँ इसको विश्वामित्र वशिष्ठ को। तो वो वशिष्ठ बोले भाई बंद करो ये सब क्या कर रहे हो, ये दिव्यास्त्र है इसका प्रयोग कैसे करना है तो सीखो पहले कब करना, बिना कोई कारण से ऐसे दिव्यास्त्र फेंके जा रहे हो, ये क्या है, तुम्हें सिखाया नहीं जिसने दिव्यास्त्र दिया ऐसे किसका उपयोग कब करना चाहिए, ऐसे दे दिए दिव्यास्त्र। वो सुनता ही नहीं था, बस फेंके जा रहा था दिव्यास्त्र विश्वामित्र। तो वशिष्ठ सोचा ये ऐसा नहीं मानेगा, तो वशिष्ठ ने क्या देखा, उनके चलने के लिए जो लकड़ी का उपयोग करते थे वो लकड़ी उन्होंने उठाई हाथ में, बोले वो लकड़ी देना जरा, सर्वेंट को बोला वो लकड़ी दिया, वो चलने के लिए स्टिक होती है वो स्टिक फेंकी ब्रह्मास्त्र के ऊपर। तो ब्रह्मास्त्र जैसे ही लकड़ी उसके पास गई 2 मिनट में बर्फ बन गया पूरा ब्रह्मास्त्र, और वापस चला गया विश्वामित्र के पास, सारे अस्त्र एक एक करके वापस चले गए और लकड़ी उसके पीछे पड़ी विश्वामित्र के पीछे। और विश्वामित्र भागने लगा, वो सोचने लगा एक छोटी सी लकड़ी उसने ऐसे ही फेंक दी, इसमें ब्रह्मास्त्र अग्निअस्त्र वरुणास्त्र सारे अस्त्र को ठंडा करके फेंक दिया, अभी उसने धनुष से उठा लिया होता तो मेरा क्या होता। वाह वाह, ये तो इतना शक्तिशाली है, एक अपनी लकड़ी से सारे दिव्यास्त्र को ऐसे ही, उसने तो कुछ किया भी नहीं, वो तो ऐसे ही लेटा लेटा मसाल ले रहा है अभी भी वशिष्ठ, पर ये वो अभी अभी भी उसका मसाज चालू है और लकड़ी सब काम कर रही है उसकी, छोटी सी लकड़ी वो बहुत स्ट्रांग है ये। इसका अर्थ है कि इतनी तपस्या से काम नहीं चलेगा, मुझे ब्रह्मर्षि बनना पड़ेगा, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनना पड़ेगा। तो अभी गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? बोले मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। तो बोले देखो मैं ब्रह्मा हूँ। बोले हाँ, और मैं तुम्हें कहता हूँ तुम ब्रह्मर्षि हो तो अब मान लो कि तुम ब्रह्मर्षि हो, बात खत्म करो इधर, है ना। तो बोले नहीं ऐसे नहीं, विश्वामित्र को वशिष्ठ को बोलो कि वो मुझे ब्रह्मर्षि बोले, है ना। कि देखो ऐसी ईर्ष्या ऐसी होती है, तुम बोलोगे ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा, बोले मैं बोलता हूँ कि तुम ब्रह्मर्षि बोले, तुम्हारा बोलने से कुछ नहीं होगा। वशिष्ठ अगर बोलेगा कि मैं ब्रह्मर्षि हूँ और मेरा आदर करेगा, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ मेरा अभियान सफल हुआ, ऐसी भावना होती है। देखो कितनी हीन भावना है, लेकिन फिर भी ये भौतिक जगत का ऐसा रोगी है, क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने बोल बस इतनी सी बात, चलो मैं आता हूँ। वशिष्ठ को बुलाया, भाई वशिष्ठ इधर आओ। तो वशिष्ठ आए, बताइए क्या है सेवा। ब्रह्मा जी बुला रहे, क्या सेवा है? बोले तुम इसको बोलो तो ये ब्रह्मर्षि है। तो बस बस इतनी सी बात। तो बोले कि विश्वामित्र आप ब्रह्मर्षि हो, आप ब्रह्मर्षि क्या, आप तो हम सब ऋषियों के भी ऋषि हो, आप हम सबके गुरु बनने योग्य हो, आप जैसी जैसी तपस्या आपने के संसार में आज तक किसी ने नहीं की, आप तो मेरी पूजा के योग्य हो, मैं भी आपके पूजा करके मैं भी अपना सौभाग्य मानूंगा। ऐसे सब बता विश्वामित्र खुश हो गया, हाँ दिस इज व्हाट आई वांटेड, यही चाहता था मैं। सो लेकिन यहाँ तो ऐसा झगड़ा खत्म हो गया था, है ना, ऐसा झगड़ा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ये द्वेष की भावना जड़ उसके मूल में भरी पड़ी हुई थी। देख रहा भक्तों को ये सीखने की आवश्यकता है यहाँ पर कि ईर्ष्या से द्वेष जन्म लेता है। और विश्वामित्र के हृदय में वशिष्ठ के प्रति उपलब्ध दृष्टि से द्वेष था। वो विश्वामित्र पहले से ही वशिष्ठ को ईर्ष्या की दृष्टि से ही देखता था कि ये बहुत ही तेजस्वी है, शक्तिशाली है, और मैं इतना शक्तिशाली नहीं। जो व्यक्ति अपनी जिस व्यक्ति की अपनी योग्यता नहीं होती, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए वो जितना संघर्ष करता है ना, तो शायद वो चीज़ उसको प्राप्त हो भी जाए, वो स्थान प्राप्त हो भी जाए, लेकिन उसके मन में शांति नहीं रहती कभी, क्योंकि वो निरंतर संघर्ष करता रहता है अपने आप से और लोगों से। कई बार हम देखते हैं ऐसी चीज़ों को, इसको बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष, अपने नाम को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कई बार लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष बहुत ही कष्टदायक होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि ब्रह्मर्षि तो बन गए, सब ऋषि उनको रिस्पेक्ट भी करना शुरू कर दिया, हाँ सारे ऋषि, वशिष्ठ ने एक बार नमस्कार कर दिया, मीन्स सारे ऋषि ने नमस्कार किया, ऋषि समान ने उसको नमस्कार किया, इतना तेजस्वी था वो विश्वामित्र। लेकिन इक्ष्वाकु वंश में एक राजा था जिसका नाम था त्रिशंकु, एक त्रिशंकु नाम का राजा था, और वशिष्ठ जो था वो उनका गुरु था उस समय इक्ष्वाकु वंश में। तो त्रिशंकु नाम का जो राजा था उसकी बड़ी इच्छा थी, एक दिन वो गया वशिष्ठ के पास अपने गुरु के पास, और जाके कहा कि गुरुजी मुझे स्वर्ग में जाना है। तो गुरु जी ने कहा कि वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है तुम अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, जैसे ही तुम्हारा मृत्यु होगा तुम स्वर्ग में चले जाना। बोले नहीं ऐसे नहीं, मुझे अभी जाना है। बोले अभी जाना है तो लेकिन आपको एक तो स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये मर जाना पड़ेगा, ये मर जाओ फिर चले जाना स्वर्ग में। बोले मुझे अभी जाना है, इसी समय जाना है स्वर्ग में। बोले कौन देता ऐसे फालतू आइडिया तुम्हें स्वर्ग में जाना है, ये कोई आइडिया है, पागलपन है ये, किसने बोला तुम्हें ऐसा करने को? बोले मैं जाना चाहता हूँ। बोले तुम नहीं जा सकते। बोले आप तो गुरु हो, कुछ भी कर सकते हो, क्यों नहीं भेजते? बोले मैं गुरु हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कुछ भी करूँगा, मैं भगवान के नियमों का अनादर नहीं करूँगा, भगवान ने जो नियम बनाया है उस नियम का पालन करूँगा। बोले तो कैसे गुरु हो? बोले ऐसे गुरु से क्या फ़ायदा? तो बोले ठीक है चले जाओ, मैं मुझे कोई तुम्हें शिष्य बनाने का मोह नहीं है, तुम अपना काम, तुम अपना गुरु ढूंढ लो जो जिसको पास जाना है। ये देखो ऐसा इक्ष्वाकु वंश का राजा था, लेकिन अगर आप गुरु के पास अनादर, गुरु का अनादर करोगे तो गुरु आपका त्याग कर देंगे शिष्य का। वशिष्ठ ने बोला मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं करने वाला, छोड़ो। तो त्रिशंकु को बड़ा परेशान हो गया। वशिष्ठ के बहुत सारे पुत्र थे, साउथ इंडिया में सब रहते थे। वशिष्ठ तो चले गए लेकिन ये त्रिशंकु गया उनके पुत्रों के पास, और उनके पुत्रों के पास जाके उसने कहा कि प्रणाम, बोले मैं तुम्हारे फादर पिता का शिष्य हूँ, इक्ष्वाकु वंश का राजा महाराज त्रिशंकु। तो नमस्कार, क्या चाहते हो? बच्चे थे सब लोग ऐसे यार, बोले मुझे स्वर्ग जाना है। तो बोले जाओ और कह जाओ। बोले ऐसे नहीं अभी जाना है, इसी समय। तो बोले इसी समय का अर्थ क्या? बोले मुझे मरना नहीं है, बिना मरे जाना है स्वर्ग में। तो बोले पागल हो गए हो क्या राजा, तुम क्या ऐसा सपना है क्या, क्या हुआ ऐसा? बोले मेरे बोले तुम्हारे पिताजी के पास गया, तुम्हारे पिताजी ने ना बोल दिया मुझे स्वर्ग में जाने का। बोले पिताजी ने ना बोल दिया तो फिर हम कैसे करेंगे आपकी सहायता? बोले तुम लोग तो जवान हो, वो तो बूढ़ा है, तुम सब जवान हो, तुम तो कोई रिसर्च कर सकते हो ना, ऐसा कुछ रेवोल्यूशन काम कर सकते हो, एवोल्यूशन, कुछ एवोल्यूशन करो, कुछ रिसर्च करके देखो कुछ हो सकता है। बोले हाँ ये बात सही है, सब लोग हंसने लगे। बोले ये बात सही है, एवोल्यूशन हो सकता है। बोले हम स्वर्ग के जाने का रिसर्च नहीं करेंगे, आपका कोई चमत्कार नहीं करेंगे स्वर्ग में जाने का, लेकिन एक चमत्कार जरूर करेंगे, तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो, तुम चंडाल बन जाओ। तो उसको चंडाल बना दिया तुरंत उसी समय। और राजा था गोरा गोरा, एक ही मिनट में पूरा काला हो गया, उसका शरीर पूरा काला, उसके मुकुट सोने के सारे लोहे के बन गए, उसकी चादर पीले कलर की थी वो काली हो गई, पूरा चंडाल बन गया। उसको देख के भी भय लगे, भयानक हो गया, ऐसा चंडाल बन गया। बोले जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। तो रोने लगा, हाय हाय क्या करूँ मैं, उसके गांव उसके राज्य में वापस गया तो सब उसने पत्थर मार के भगा दिया हट यहाँ से। कोई राजा ने किसी को किसी ने पहचाना भी नहीं उसको कि हमारे देश का राजा है, तो उसको भगा दिया। तो रोता रोता वैसे ही घूम रहा था कहीं पर, तो घूमते घूमते उसने एक ऋषि को देखा आश्रम के पास, और ऋषि के पास जाके उसने प्रणाम किया, और ऋषि वही अपना विश्वामित्र। उसके पास जाके गया तो कहा कि मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा त्रिशंकु हूँ, मेरा आप सूर्य का आपका सूर्य का जैसा तेज है, आप कृपा कीजिए मुझ पर कि मैं ऐसी बोले तुम चांडाल कैसे बन गए? बोले तुम तो लगते हो क्षत्रिय, बात करने से क्षत्रिय हो लेकिन दिखने में तो चांडाल हो, ऐसा क्यों हो गया? बोले वशिष्ठ ने किया ये काम, वशिष्ठ के पुत्रों ने मुझे श्राप दिया। बोले ऐसा क्यों, क्या बात हुआ? बोले मुझे स्वर्ग में जाना था बिना मरे, तो उसने मुझे उसने ना बोल दिया, उसके बच्चों के पास गया, बच्चों ने श्राप दे दिया ऐसा, तो क्या करूँ। तो वशिष्ठ ने कहा ना, विश्वामित्र ने कहा तुम्हारा आइडिया तो गलत ही है ना, ये विचार तो गलत ही है, ऐसा आप ऐसा पागल पर ऐसा आइडिया आया कहाँ से। बोले कि मैं बोले सुबह रात को सुबह उठा, मैं निंदे से उठा, सोचा कि स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य होता है तो क्यों ना मैं स्वर्ग में जाऊँ, ऐसे ही बस सोचा। बोले ऐसे ही सोचा, पागल हो तुम, और गुरु का भी त्याग कर दिया, इसका ही परिणाम है कि तुम चांडाल बन गए। अच्छे ढंग से जवाब दिया, बोले देखो देखा ना क्या परिणाम आया, ऐसे ही फालतू विचार आता है तो क्या परिणाम, ऐसे सोचते भक्तों को समझना चाहिए, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट वाले विचार नहीं करने चाहिए, अपना ऐसा कोई उल्टा सीधा काम मत करना, जो गुरु हमारे वैष्णव में बताते वही करना करे। तो ये व्यक्ति ने देखा कि विश्वामित्र ठंडे पड़ रहे, तो बोले इसको उकसाना पड़ेगा, है ना। तो उसने फिर से बोला, बोले वशिष्ठ ने श्राप दिया, लेकिन वशिष्ठ ने और एक बात भी बताई थी। क्या बताया था? बोले मैं तो नहीं भेज सकता, लेकिन और कोई भी तुम्हें स्वर्ग नहीं भेज सकता। अच्छा, और कोई भी नहीं भेज सकता, गलत बात है। हाँ हाँ, बोले तुम भी नहीं भेज सकते। बोले मैं भेज सकता हूँ। बोले भेज सकते? हाँ हाँ, क्यों नहीं भेज सकता, भेज सकता हूँ मैं तुम्हें, यज्ञ करूंगा मैं, सब ऋषि समाज को आदेश दे दिया, एक बड़ा यज्ञ होगा, त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना है। तो सब ऋषिगण आए, देवताओं को आमंत्रण दिया, सब देवताओं को कि यज्ञ, तो इंद्र वहां पर आए, सब देवता आए। इंद्र ने कहा कि भाई ये यज्ञ क्यों हो रहा है? तो बोले स्वर्ग के राजा इंद्र को कहा कि भाई देखो इसको स्वर्ग में जाना है, त्रिशंकु को स्वर्ग में जाना है। तो बोले ठीक है, बोले इतने सारे लोग रोज आते हैं स्वर्ग में, एक और एक आ जाएगा तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले जाए मर जाए उसके बाद स्वर्ग में चला जाए, कोई बात नहीं। बोले ऐसे नहीं, वो ऐसे ही जाना चाहता है स्वर्ग में अभी अभी। बोले पागल हो गए वो विश्वामित्र को कहा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, जानते हो क्या बोल रहे हो, और वो भी इंद्र से। तो बोले मैं जानता हूँ तुम्हारे नियम, लेकिन ये अपवाद रूप है, इसको एक को जाने दो, मेरे कारण जाने दो, मेरे कहने से मेरी रिकमेंडेशन ले लो, उसको जाने दो, एक आदमी को जाने के, सॉरी उसको जाना है तो जा सकता है, लेकिन मरने के बाद इस तरह में नहीं जाएगा, सॉरी। इंद्र भी अड़ कर रह गया, मैं नहीं सुनूंगा नहीं तुम्हारी कोई बात, सॉरी कोई नियम में तोड़ भाई, तो ऐसा क्या किया उसने भाई उसके लिए नियम तोड़ दो, संभव नहीं, सॉरी। बोले नहीं ये तो संभव नहीं है, बोले इसको तुम्हें ले जाना पड़ेगा। बोले मैं नहीं ले जाऊँगा, क्या कर लो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं ये चला सारे देवता को, बोले चलो भाई ये कोई यज्ञ नहीं होने वाला, चलो यहाँ पर। तो सब लोग वापस गए थे स्वर्ग लोग, तो इसने बोला ऐसे नहीं होगा इंद्र, इसको तुम्हें ले जाना पड़ेगा, मैंने कहा इसलिए। बोले नहीं होगा, सॉरी विश्वामित्र, ये नहीं पॉसिबल नहीं है। तो बोले अगर तुम इसको नहीं ले जाओगे तो मैं अपनी योग शक्ति से इसको स्वर्ग में भेज दूंगा, बोले करो जो करना है तुम्हें। तो वो तो पहुंच गए, तो इसने कहा कोई बात नहीं, मैं मेरी योग शक्ति से तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। त्रिशंकु के सिर पे हाथ रख दिया और बोला कि अपनी योग शक्ति का ट्रांसफर किया उसके अंदर, और बोला कि इस अभी अभी इसी समय उड़ के चले जाओ स्वर्ग में योग शक्ति से, यू नो से। तो इंद्र के पास उसका मैसेंजर आया डिटेक्टिव, बोला भाई कोई वो त्रिशंकु जो था ना विश्वामित्र चाहता था वो इस दिशा में आ रहा है, इस साइड। बोले व्हाट नॉनसेंस इज दिस, मैंने उसको ना बोला था फिर भी वो कैसे आ सकता है इधर, सारे दरवाजे बंद कर दो, कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। उसने इंद्र ने अपना वज्र उठाया और वज्र उठाया, वज्रपात किया उसके ऊपर, त्रिशंकु के ऊपर फेंक दिया उसको पीछे, और जैसे वज्रपात हुआ उसको जोर से झटका लगा त्रिशंकु को, और विश्वामित्र की ओर वापस गिरने लगा। विश्वामित्र ने देखा कि वज्रपात हो रहा है, इसको वापस भेजा, ये कैसे संभव है। उसने यहाँ से यू नो वज्रपात किया, तो वो यहाँ से कूदा वहाँ पर तो ये टॉस हुआ, फिर से ऊपर गया, ऊपर से फिर से वज्रपात गया, नीचे आया, नीचे से फिर से वज्रपात गया, ऊपर गया, और तीन बार ऐसा हो गया। वो थक गया, बोले सॉरी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे मेरी रक्षा करो, मैं नहीं चाहता ऐसे। विश्वामित्र नहीं, ये संभव नहीं है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस दिया है मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज के ही रहूँगा। बोले मुझे कोई स्वर्ग में नहीं जाना, मुझे कोई नरक में भेज दो, मैं नरक में रहने को तैयार हूँ, किसी जगह का राजा रहा तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। बोले अभी तुम्हारी इच्छा काम नहीं करेगी, अब मेरी इच्छा काम करेगी, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा होगा। तो फिर से स्वर्ग में फेंकने का ट्राई किया, फिर से धक्का लगा उसको, फिर उसको इंद्र ने फिर से उसको झटका लगाया, और बाद में सफल नहीं हुआ विश्वामित्र, तो त्रिशंकु आके गिरा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं जाना स्वर्ग में, मेरे मेरे पास मुझ पर इस तरह का अत्याचार मत कीजिए, ये अन्याय है, मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहा हूँ, आप दोनों के बीच में मुझे गेंद की तरह उछाल के फेंक रहे हो, मुझे जैसे कोई टेबल टेनिस खेल रहा हो, यू नो इस तरह से आप, ये बड़ा अन्याय है मेरे साथ, मैं एक जीव हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मेरे पर उद्धार कीजिए। बोला अच्छा, विश्वामित्र ने कहा कि इंद्र अगर नहीं चाहता कि तुम स्वर्ग में जाओ, तो इंद्र समझता क्या अपने आप को, मेरे पास तपोबल बहुत है, मैं दूसरा स्वर्ग बना सकता हूँ अपने तपोबल से, तब तो रहोगे ना। तो उसने पूरा स्वर्ग बनाया, बड़ा तपोबल से देवता बनाया, इंद्र भी बना दिया नया स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग बनाया, अप्सराएं बनाई, समुद्र उद्यान बनाए, बगीचे बनाए, देवता बनाए, इंद्र बना दिया, बस यहाँ तक सर्जन सब किया, उसके बाद उसका तपोबल खत्म हो गया, उसका तपोबल खत्म हो गया। और ये जितना तपोबल खत्म हो गया, अभी एक चीज बाकी रह गया था इसमें, कि उसको ऑर्बिट में हवा में तैरना, इतना बड़ा लोक बनाया स्वर्ग लोक, वो स्वर्ग लोक रहेगा कहाँ पर।